देवयानी के दर से कुछ लड़के थे, पीछे सर्विस्टा के भी गर्व से कुछ लड़के हुए, किंतु अनिति पूर्वक हुआ। कुछ दिनों के बाद में शुक्राचार्य को बात मालूम हुई कि हमारी लड़की की उपेक्षा करके राजा की लड़की से इसको भी लड़का हो गया। पुण्य विषम पात है, जाओ तुम बूढ़ा भी हो जाओ। तो राजा बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया तो लड़की बोली ऐसे हमारे पति बूढ़े हो गए। फिर शुक्राचार्य से निवेदन किया हमारे पति फिर नौजवान हो गया। उन्हें कहा जब ऐसा नहीं होगा, एक बात होगा, तुम्हारे जितने लड़के हैं 3-4 लड़के हैं अपनी युवावस्था तुमको दे देंगे और तुम्हारी बूढ़ावस्था ले लेंगे, तो ये ऐसा हो सकता है, तुम नौजवान हो सकते। उन्होंने अपने लड़कों से मांगा जब तुम अपनी युवावस्था दे दो और मैं कुछ दिन तुम्हारी युवावस्था लेकर के रहूंगा और संसार भोग करूंगा। उन्होंने अपने लड़के से कहा, उनका नाम था जदु। जदु ने हरगिज ऐसा नहीं, मेरा जो जन्म हुआ है युवावस्था ये भगवान का भजन करने के लिए लगाऊंगा। तुम्हें क्यों, तुम पिता है तो तुम अपने कर्म के फल से बूढ़े हुए हो। मैं बूढ़ा होकर के अभी मर जाऊं मैं नहीं चाहता। मैं अपनी युवावस्था में बचपन से ही भगवान का भजन करूंगा। तो जो लोग भगवान का भजन नहीं करते बचपन से, बूढ़ा होने पर वही गति होती है जो रावण की गति हुई, कुंभकर्ण की गति हुई, बड़े बड़े राजाओं की गति हुई। अभी हमारे देश में इंदिरा गांधी की, उनके दो पुत्रों की जो गति हुई जो भगवान का भजन नहीं करते और अपनी युवावस्था को संसारिक कामों में लगाते हैं और बूढ़ा हो जाने के बाद में पछताते हैं। सिर धूप धूलकर काल ही कर्म ही ईश्वर ही दोष लगा उनको, दोष देते अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, काल ऐसा है, हमारा भाग्य ऐसा है, दोष देते हैं। ये नहीं देखते कि हमारा जन्म ही मनुष्य भगवान का भजन करने के लिए हुआ। अपने युवावस्था को विषयों के संग्रह में लगाते हैं और जिसके लिए करते हैं वही उनको मारता है। औरंगजेब, शाहजहां, ये सब इसके दृष्टांत हैं। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके इसलिए किया, अपने भाइयों को मरवा डाला, इसलिए भाई जगत में शांति और सुख नहीं है, भगवान के भजन में ही एकमात्र सुख और शांति है और किसी चीज में नहीं है। इस चीज को पहले समझिए, बचपन से ही भगवान का भजन कीजिए। तो उसने नहीं किया, जाओ हम तुमको अपने राज्य से वंचित करते हैं, तुम राजा नहीं हो सकता। तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे बेटे, बेटे के बेटे बेटे राजा नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कोई परवाह नहीं, हम भगवान का भजन करेंगे। उनमें से एक लड़के ने ले लिया, उसने भोग किया, राजा बहुत दिनों तक भोग करने के बाद भी शांति नहीं मिली, कुछ तरह से भी शांति नहीं मिली। तो जिसका, जिसने कहा जिसे मैं जो अवस्था में भगवान का भजन करूंगा तो मैं नहीं दूंगा, भगवान ने देखा कि मेरे लिए इसने राज्य ठुकरा दिया, इसलिए उसी के कुल में भगवान आए, उन्हीं के वंश में, जदु महाराज जी के वंश में एक राजा हुए अजामिल, देवमिल। उनकी दो पत्नी, एक थी क्षत्रियाणी और दूसरी थी वैश्यवाणी गोप, गोप की कन्या। गोप की कन्या से परजन्य महाराज का जन्म हुआ गोप, और उससे हुए सूरसेन, क्षत्रियाणी से। सूरसेन के बेटे हुए वसुदेव जी, परजन्य के बेटे हुए नंद महाराज। एक हो गए गोप और एक हो गए क्षत्रिय। उसी कुल में मथुरा में आज के दिन में आज से 5,000-5,500 वर्ष पहले इसी मथुरा में कृष्ण अंश के रूप में जन्म इनका यहीं पर हुआ और गोकुल में परिपूर्ण रूप से स्वयं भगवान के रूप में कृष्ण अवतरित हुए। इसलिए बहुत से कारण थे, तब जब धर्म की हानि होती है तब धर्म की रक्षा करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए, असुरों के विचार को दबाने के लिए भगवान का आविर्भाव होता है। अभी शायद कुछ विलंब है इसलिए भगवान का अवतार नहीं हो रहा, किंतु मैं देख रहा हूं जब जब गायों कटती हैं और धर्म तत्वों को जानने वाले ब्राह्मणों पर संतों पर अत्याचार होते हैं तब असुर लोगों का बढ़ापन होता है और उसी समय भगवान का अवतार होता है। कल अभी गया था जन्मभूमि में, वहां देखा सचमुच में कंस की नगरी मथुरा है। श्रद्धालु जातियों को वहां पर मैंने देखा नहीं, वहां देखा केवल कंस के चार पुलिस अघासुर बकासुर और जितने दंत वक्र इत्यादि के जितने चेले वहां पर भरे हुए हैं, बंदूक और ये सब ट्राइगन इत्यादि सब दिए हुए, साधु संतों को भीतर नहीं जाने देते और अपने परिवार के बूढ़ों को लड़कियों को लड़कियों को लेकर के खुश रहे। किसी को दर्शन करने के लिए इजाजत नहीं, बड़ी मुश्किल से चारों तरफ से साधु लोगों को भी देखेंगे, तुम्हारी झोली में ये क्या है, मारा इसमें कुछ छिपा तो नहीं रखा, दंड में क्या चीज है, अच्छे संतों को नहीं पहुंचने देंगे और उनके घरों के बूढ़िया बूढ़े लड़के लड़कियां सभी लोग ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये मैं देखता हूं कि ये कंस का ठीक राजा का राज्य अभी लौट आया है, वहां पर जो जाएंगे वो समझेंगे जैसे वो कैसा राज्य उनका लौट आया। मुसलमानी कुल में भी जितना अत्याचार नहीं हुआ, अंग्रेजों के समय में भी जितना अत्याचार नहीं हुआ, उससे अधिक अत्याचार मैं समझता हूं कि अब हो रहा है। ये लोग कहते हैं कि ये तो प्रजाओं के लिए, लोगों के लिए, भलाई के लिए, रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। कंस भी कहा वसुदेव जी को जेल में देकर हथकड़ी देकर और पुलिस लगा दिया चारों तरफ में, कहा जी ये तो इनकी रक्षा के लिए हम कर रहे हैं, ऐसे ही ये सब कर रहे। तो आज के इस वातावरण में देखिए, वसुदेव जेल में थे, 8 महीने का गर्भ था, उधर यशोदा देवी को भी था एक साथ में, इस उल्लासमय वातावरण में सभी लोग प्रसन्न थे, नदियां बड़ी शांत थी, आकाश में मेघ धीरे धीरे गर्जन कर रहे थे, रिमझिम वर्षा हो रही थी, ऋषियों के यज्ञ मंडप अपने आप आग से जल उठी, चारों तरफ में स्वाहा स्वाहा होने लग गया, हरिनाम का कीर्तन होने लगा, साधु संत लोग प्रसन्न हो गए, नदियां लबालब भर गईं और चारों तरफ में कमल खिल गए। ऐसी स्थिति में आज के 12 बजे रात में उनका जन्म होगा, उसके संबंध में हम बतलाएंगे। मालूम होता है देवकी और वसुदेव पर जितने अत्याचार हुए, अभी असुरों के अत्याचार में गति अभी कमी है, इसलिए प्रभु हम लोगों की नहीं सुन रहे। इसलिए आप लोग सभी लोग हरि नाम करेंगे, कीर्तन करेंगे, हमने आयोजन इसलिए किया है रंग ढंग के अपने कर लेके जाएं, इस चीज को बतलाने के लिए। भगवान का भजन नहीं करेंगे सुखी नहीं रहेंगे, लाख रुपया कमाइए, व्यवसाय वाणिज्य कीजिए, रुपए आएंगे वही रुपए आपके जीवन का काल हो जाएगा, इसलिए ये सब चीजें हो जीवन निर्वाह के लिए इसकी जरूरत है। किंतु जीवन बस जीवन भर यही करते रहेंगे, भगवान का भजन नहीं किया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उससे हमारा संबंध क्या है, कैसे जीवन में सुखी रह सकते हैं, ये सब नहीं करेंगे तो जीवन में कभी भी नहीं सुखी रह सकते हैं, इस चीज को समझिए। इसलिए आप लोग जिस रूप में हैं उसी रूप में रहते हुए भगवान का भजन कीजिए, जीवन का निर्वाह कीजिए, इस तरह से आप लोग इस जीवन में सुखी रहें, परलोक में सुखी रहें। अभी हमारा कीर्तन हम लोग के लिए करेंगे लोग, आप लोग कीर्तन सुन। एक तुम भी कीर्तन करना है, अभी तो हम कीर्तन को संचालन करो, उनको भी एक सुनो ज्ञान की बाई। बैठो जब बुलाए, अच्छे अच्छे कीर्तन होना चाहिए, अच्छे अच्छे।
राधा कृष्ण की सेवा की जाएगी, किंतु रहेंगे कैसे? माँ धुतरी आप लोग सुने होंगे, आप लोग तो देखी है, आप धुतरी मधु करी, माँ धुतरी नहीं है, करी मधु जैसे एक एक बूंद से थोड़ा थोड़ा रस लेता है, किसी किंग का कोई कुछ नहीं बिगड़ता। वैसे ही संत लोग बड़े बड़े राज्यों को छोड़कर, धन संपत्ति छोड़कर, पत्नी पुत्र और सबको छोड़कर वृंदावन में हृदय में डेरा जन कर, खाने के लिए कुछ नहीं, घर में जाते हैं माधवती आधी रोटी की आधी रोटी मांगते हैं, और एक रोटी नहीं वो भी अंधकार होने पर, जो किसी का चेहरा न देखे सौंदर्य नहीं हमारे आंखों में आया है, और नीची निगाह तक राधे राधे का रोटी का टुकड़ा उनका जूठा टुकड़ा उनको मिल गया, बिना नमक के सूखी है तो उसमें पानी में भी जाकर उसी से पेट खाता है, कृष्ण कृष्ण और देखिए कितने में गाय पलट हो जाएगी, संसार विशाल वासनाएं दूर हो जाएंगी, सुखदाजी कृष्ण कविता को कारण पद्य को कारण सूरदास को अभी सभी लोग जान रहे हैं, उसी सूर नगरी के ये रहने वाले ये दोनों बाप और बेटे हैं, इनके पिताजी भारतवर्ष के संगीत कलाकार हैं, ये उन्हें ये लोग भी वैसे ही हैं, वंश परंपरा से चले आ रहे हैं, मातृत्री देने वाला हम लोग मातृत्री लेने वाले हैं, माधवत्री का करके भी संसार लोग छोड़ करके बड़े बड़े नरेश के लड़के लोग राजा लोग माधवती से जीवन निर्वाह करते, नमक भी नहीं लगाते थे, कभी रात में सो गए नहीं तो नहीं सो गए आप घंटा और 15 मिनट स्वास्थ्य, कभी मुट्ठी भर चाहे कभी उंगली मना, ऐसे रह करके बजे में आप लोगों की माधवत्री लेकर के खाते थे, उस समय आप लोगों के बंसल लोग भी बड़े शुद्ध विचार रहे थे, इसलिए आपके घर में खाते थे, आज तक चाचा नहीं है, ये वृंदावन की महिला है, एक यदि पलक भी रही है कोटि कोटि अपराध हो जाएंगे, राधा कृष्ण के चरणों में है कितनी भक्ति होगी और जन जन आपका आगे सुनिए। यद्यपि ऐसी लीलाएं भी हैं जिनमें ब्रह्मा इत्यादि तक शंकर तक मुक्त हो जाते हैं, भगवान की दो लीलाएं हैं, एक लीला है ऐश्वर्य पद और दूसरी लीला है माधुर्य पद। यद्यपि कृष्ण समस्त अवतारों के अवतारी हैं, जितने अवतार निकले हैं राम नृसिंह कल्कि वामन इत्यादि सब कृष्ण से निकले हैं, वही गोप के लड़के ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ब्रज की गलियों में जो खेले वो समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वेद उपनिषद शास्त्र इत्यादि कहते हैं, कोई कोई कहते हैं ऐसा भी कृष्ण नाम वेदों में नहीं है, जो गुल्लू जैसे हैं जिनको नेत्र नहीं है वो नहीं देखते, वेद उपनिषद शास्त्र समस्त जगहों में कृष्ण के नाम है, कृष्ण स्वयं भगवान है, इसलिए उन्हीं से राम नीचे कल्कि बामन इत्यादि 24 प्रकार के अवतार निकलते हैं सबके मूल हैं। इनकी लीलाएं दो प्रकार की हैं, एक ऐसी लीलाएं हैं मधुर लीलाएं जो ब्रज में गोकुल में जन्म लिया और वहां पर किया, दूसरी लीलाएं हैं मथुरा और द्वारका की, यहां पर उन्होंने शंख चक्र गदा पत्र धारण किए, बड़े बड़े असुरों को क्षण मात्र में निधन कर दिया, वो दूसरी लीला है। कंस को पछाड़ा, ये उनकी ऐश्वर्यमय लीला है, जन्म लिया शंख चक्र पद्म धारण करके, ये ऐश्वर्यमय लीला है। और माधुर्यमय लीला का उसमें से एक ये वर्णन कर रहे थे, ये यशोदा की गोदी में है, चंद्र को देखा रोने लगे, मैया में चांद लुगा, उन्होंने सोचा जब मक्खन का लोना है और रोने लगे, कौन रो रहे हैं, समस्त ईश्वरों के ईश्वर, स्थिति प्रलय करने वाले ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सबके आदि स्वयं अनादि हैं, रो रहे हैं। मैया ने कहा जैसे ये इसको कैसे मनाए, उन्होंने कहा जी बेटा देखो यहां पर है, खड़े में दिखलाया चांद को, अब चांद को वहां से लेने के लिए मचल गए। यशोदा जी ने कहा देखो ये आकाश में चांद है किंतु इसमें विष है, मतलब जब विष कैसे लग गया, समुद्र मंथन से निकला उसमें विष निकला था इसलिए लग गया, इसको लेने से आदमी मर जाता है, मतलब किंतु कृष्ण मचल रहे हैं कि मैं तो चांद लूंगा, मैं मक्खन लूंगा, मैं चांद लूंगा। मैया ने छिप करके कहीं से और मक्खन मंगा लिया और उसको कहा जे घड़े से छुटपुट को निकाल करके देख ले, पहले तो ले लिया, फिर घड़े में देखा चांद को उसका परछाई और फिर रोने लगे जे मैया हमको बहका रहे। ये सब लीलाएं क्या है, ये मधुर लीलाएं, ब्रह्मा इत्यादि मोहित हो जाएंगे, असुरों को मारने में ये सब नहीं मोहित होंगे। यशोदा जी एक दिन आंगन में खड़ी हैं और कृष्ण मचल रहे हैं उनकी गोदी में चढ़ने के लिए, यशोदा जी अंगुली ऐसे दिखा करके कह रही हैं तू हमारे गोदी में नहीं चढ़ सकता, मैं तुझे दूध नहीं पिलाऊंगी, तू अभी मैंने स्नान कराया और तुम मट्टी में लौट रहे हो, घर घर में मक्खन चोरी करते हो, मैं तुझे कभी गोदी नहीं। और कृष्ण मचल करके रो रहे हैं, मिट्टी में लौट रहे हैं और उसी समय नारद जी आकर के देख रहे हैं, ओ यशोदा तूने कैसा तप किया, पूर्व जन्म में तपस्या की, कौन से तीर्थों में स्नान किया जो आज विश्व ब्रह्मांड के सृष्टि करने वाले ईश्वरों के भी ईश्वर तेरी गोदी में नलने के लिए ललक रहा है और तुमसे ऐसे शासन कर रही है, डांट रही है। जम भी मृत्यु भी जिसके भय से कांपती है, इसका एक बार नाम लेने से मृत्यु भी टल जाती है और वो तुम्हारी गोदी में चढ़ने के लिए मचलता, ये सब माधुर की लीला है। गोपियों से जो प्रेम किया ये माधुर की लीला की परम सीमा है, लोग नहीं समझ पाते मधुर लीलाओं, इसलिए वो कहते हैं कि ये तो कृष्ण कामी था, ब्रज का जो कृष्ण, और महाभारत का जो लड़ने वाला युद्ध था भीष्म पितामह से वो भगवान था, भगवान नहीं महापुरुष थे, उसको भी भगवान नहीं मानते, सब लोगों को एक समझते हैं, सब देवताओं को भी कृष्ण के बराबर समझते हैं, इसलिए यह बात ठीक नहीं। अरे श्रुतियां वेद तक भी तपस्या की कोटि कोटि जन्मों तक, तब वो गोपी के रूप में आई, तब कृष्ण से प्रेम किया, यही प्रेम जगत का आधार है, कृष्ण का स्वरूप ही यह प्रेम है। यदि कृष्ण की ऐसे लीलाएं नहीं होती तो कृष्ण का कोई महत्व नहीं होता, कृष्ण का महत्व यह है कि गोपियां उनसे किस प्रकार से प्रेम करती थी, कृष्ण प्रेम के विषय है, गोपियां प्रेम की आश्रय है, जगत में ऐसी कोई उपासना नहीं है, इसलिए बतलाया शास्त्रों में आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्याकाचितुपासना पजुपद वर्गेण जाकल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तम तत्रादो। कृष्णचंद्र ब्रजेंद्र नंदन ये सर्व आराध्य हैं, ब्रज भी उन्हीं के समान में आराध्य है। जो मथुरा में जन्म लिया वो कृष्ण की एक वैभव प्रकाश थे, स्वयं भगवान नहीं, ब्रज में जो जन्मे पुत्र के रूप में यशोदा के गर्भ से ये स्वयं भगवान थे और देवकी के पुत्र में अंश की भगवान थे। दोनों मिल करके फिर एक हो गए जब वसुदेव जी ले गए, इसको हम पीछे बतलाएंगे। यशोदा जी के गर्भ से निकले हुए माधुर्य के परिपूर्णतम है और देवकी के गर्भ से जो पैदा हुए वो आश्चर्यमय विग्रह इनके अंश थे, इसलिए ब्रज में जो लीलाएं हुई प्रेम की लीला हुई। कृष्ण प्रेम के स्वरूप है, रसो वैशाही इत्यादि कहा गया। राम में भी जो चीजें नहीं है, यद्यपि राम और कृष्ण दोनों एक हैं, किंतु राम में भी जो चीजें नहीं है, जो कृपा नहीं कर सकते, कृष्ण वो कृपा कर सकते हैं। कृष्ण किसी के पति भी हो सकते हैं, प्रियतम भी हो सकते हैं, बेटे भी हो सकते हैं, किसी के सखा हो जाएंगे, राम नहीं हो सकते सब कुछ, नारायण इत्यादि नहीं हो सकते। यही तो कृष्ण की खूबी है, जो कि जिनकी बुद्धि कम है वो इन चीजों को समझ नहीं पाते, इसलिए कृष्ण को बतलाया गया एते चांद सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण ये स्वयं भगवान, राम आदि उनके अंश हैं। इन चीजों को समझ करके ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का भजन करना चाहिए, इसलिए उनका अवतार होता है। गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं, श्रीमद् भागवत प्रमाणों में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, यही भागवत कहता है कि गोपियों की जैसे और प्रेम विश्व में प्रेम किसी ने कृष्ण के प्रति, उन्होंने कुछ चाहा नहीं प्रेम के बदले में। प्रेम क्या है, जो उस प्रेम करने के बदले प्रेम न हो और कोई चीज न मांगे, अन्य अभिलाषता इत्यादि, इसलिए ऐसा कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति हो तो कृष्ण उसके वशीभूत हो जाते हैं, इसीलिए कृष्ण का प्रकाश है। अभी आप लोग कीर्तन सुनिए।
संगीत है सबका साथ ये कृष्ण नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभु का कल्याण के महामंत्र चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी को कह रहे हैं कि तुम हरि नाम की भिक्षा मांग करके ले आओ, आटा रुपया पैसा नहीं, बस इसी की भिक्षा मांगना, चलते फिरते उठते बैठते सोते छींकते समय पैर की चलते समय में बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का उच्चारण करो। खाते समय पीते समय में बिना स्नान किए हुए स्नान किए हुए जैसे भी हो ये नाम निकल जाएगा तो जगत से तो मुक्ति भी हो जाएगी और साथ साथ में कृष्ण का प्रेम मिलेगा, इसलिए समस्त नामों का ये सार महामंत्र है। इसलिए संकीर्तन यदि हो भी तो इस नाम का जरूर महामंत्र जरूर हो और घर में रह करके पवित्र अपवित्र समस्त अवस्थाओं में इस कृष्ण का नाम कीर्तन करना ही चैतन्य महाप्रभु की प्रधान शिक्षा है, नित्यानंद प्रभु की शिक्षा है, कृष्ण की शिक्षा है। इसलिए आप लोग जिस अवस्था में रहे यदि इस नाम को करेंगे समस्त मंत्रों का उपनिषदों का सबका ये सार है ऐसा समझ करके अपने जीवन में आचरण करें। अभी आप लोग कीर्तन सुनिए।
पहरेदार लगे हुए हैं और इसी समय में 12 बजे उसी समय में कृष्णचंद्र जी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आदिभूत हुए। बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। और यशोदा देवकी और वसुदेव जी स्तव स्तुति करने लगे और जिस समय में मथुरा में कृष्ण पैदा हुए
शंख चक्र गदा पद्म लेकर उस समय 16 वर्ष के नौ युवक जैसे किशोर जैसे सुंदर सुंदर घुघराले अलके बाल केश सुंदर अलंकार कौस्तुभ मणि शंख चक्र गदा इत्यादि को धारण किए हुए। किसी को 16 वर्ष का ऐसा बच्चा पैदा नहीं होता, ऐसे वो पैदा हुए। और ठीक उसी समय में गोकुल में यशोदा जी को दो एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। पहले हुआ लड़का और इसके बाद में हुई लड़की। कृष्ण ने पिताजी से कहा, वसुदेव जी से, तुम हमें लेकर, अभी मैं बालक रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे लेकर के गोकुल में दे आ और वहां पर एक लड़की होगी उसको ले आ। ये नहीं बतलाया कि मैं वहां पर उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी जब लेकर के चले, बेड़ी हथकड़ी खुल गई, लोहे के कपाट खुल गए, पहरेदार सब सो गए और बड़ी रिमझिम जो वर्षा हो रही है, बड़ी जोर से बरसन होने लगी, काले मेघ गर्जन करने लगे, मूसलाधार वर्षा होने लगी, कोई घर से न निकले, वसुदेव जी उनको लेकर के जाएंगे कोई देख न सके। कृष्ण ने ये सारी व्यवस्था कर दी। जब लेकर के चले जमुना में बाढ़ आई, कैसे पार करें। जब जमुना के किनारे आया, देखा बड़ी बड़ी भयंकर लहरें उठ रही, इतने में देखा एक सियाल सियार पार हो रहा है। वर्ष को देखते ही झट उसके पीछे पीछे हो लिए, केवल पानी उनमें घुटने भर पानी रह गया जमुना में, चलने लगे। जमुना ने सोचा, हमारे प्राण प्रियतम अभी जा रहे हैं, इनके चरण तो धो लूं। कृष्ण को गोदी में ले रहे थे सूप में या टोकरी में, और गोदी में ले रहे थे वसुदेव जी। जमुना जी बढ़ने लगी कृष्ण के चरणों को पाने के लिए, जब जब उठाने लगे और तेव तो जमुना बढ़ने लगी। उन्होंने सिर पर उठाया, कृष्ण के पैर पीछे और सिर इधर में। जब जमुना जी यहां तक आई तो डर गए। इतने में कृष्ण ने अपने पैर को थोड़ा सा लंबा किया और पानी में स्पर्श कर दिया जमुना जी उनके चरणों को पखार करके, और एकदम झट नीचे आ गई। बस घुटना भर पानी बस रह गया, आसानी से पार कर गए। वहां पर पहुंचे गोकुल में, सभी लोग सो रहे हैं, वर्षा हो रही है। यशोदा जी को पुत्र हुआ है या कन्या, या पुत्र और कन्या दोनों, उनको कोई पिता पता नहीं। वो मीठी मीठी कुछ मूर्छित अवस्था में थी, प्रसव काल में कुछ वेदना होती है, उस वेदना को वो समझ रही। वसुदेव जी जो अपने टोकरी में उनको जो ले जा रहे थे, कृष्ण जो वहां पर थे, उन्होंने चतुर्भुज कृष्ण को खींच लिया, अपने में मिला लिया, एक बन गए। और उसी एक कृष्ण को उन्होंने वहां पर रख दिया और उनकी लड़की को ले लिया। उनको भी पता नहीं जिसको जमन संतान पैदा हुई, उनको पता जे एक ही लड़की पैदा हुई। लेकर के लौटे और लेकर के लौट करके ज्यों ही कारागार में पहुंचे, उसी समय में जेल खाना बंद हो गया, वर्षा भी धीरे धीरे कम हो गई और कृष्ण छोटे वो लड़की छोटी सी बन करके रोने लग गई। उसकी आवाज सुनकर प्रहरी जग गए और कंस को खबर दी। कंस दिन रात चैन नहीं, देवकी का आठवां गर्भ हमें मारेगा, दिन रात चिंता करता था। चिंता करते करते सब कुछ भूल गया, उसके पाप भी भूल गए। यदि कोई शत्रु भाव से भी कृष्ण का चिंतन करे, चिंतन करते करते तन्मय हो जाए तो उसके सारे पाप दूर हो सकते हैं और कृष्ण को वो किसी न किसी रूप में प्राप्त कर लेगा। और यदि कोई माता के समान, प्रियतमा के समान, सखा के समान उनको प्रेम से बुलाए तो न जाने क्या हो जाए, उसके पशीभूत हो जाते हैं, उनके पुत्र हो जाते हैं, पति हो जाते हैं, प्रियतम हो जाते हैं, सखा बन जाते हैं। ऐसे कृष्णा वो तो रोने लगी। कंस दौड़ करके आया और अपनी बहन के हाथों से छीन लिया। देवकी रोने लगी। किसलिए रोने लगी? भैया इसको मत मार, ये तो बेटी है, बेटा नहीं, ये तुम्हारा हंतारक नहीं हो, मरने वाला नहीं होगा, तुम इसे छोड़ दे। यदि तू छोड़ देता है तो मैं अपनी इसी कन्या की शादी तुम्हारे लड़के के साथ में कर दूंगी, तू इसे मत मार। किंतु माना नहीं, उसने उठाया पत्थर पर ज्यों ही मारा त्यों ही आकाश में उड़ गई और उसके आठ हाथ निकल गए और आठों हाथों में आयुध लेकर के, अस्त्रों को लेकर के और कंस के सिर पर एक लात जमाई। लगते ही वो टिलमिला करके गिर पड़ा और ऊपर में देखा, अरे ये तो हमारी आराध्या देवी कुल देवी हैं, दुर्गा जी। दुर्गा जी ने कहा, रे कंस तू हमें क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो पैदा हो गया कहीं दूसरी जगह, अब तुम सावधान रहो, हमको तुम नहीं मार सकता, इसलिए सावधान रहो। ऐसा कह करके और आकाश में लीन हो गई, चली गई। कंस अरे हमारी आराध्या देवी ये कहीं ये दूसरी जगह पैदा हो गया, और भी चिंतित हो गया और इनसे क्षमा मांग करके कहने लगा कि हमने गलती की, तुम्हारे लड़कों को मैंने मारा, इसलिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। वसुदेव जी कहते हैं, ये असुर दुष्ट व्यक्ति आज प्रसन्न है, कल त्रिकोण करेगा। जो क्षण मात्र में प्रसन्न होता है और क्षण मात्र में ही फिर क्रोधी हो जाता है, उसका बात का कोई ठीक नहीं, इसलिए इसके बात पर विश्वास नहीं करते। और वो प्रसन्न रहे, लड़के मर गए अपने काल के वजह से, इसलिए उन्होंने कोई दुख और शोक नहीं प्रकट किया, भगवान के उसी में ही प्रसन्न रहे। इसलिए आज अभी रात के 12 बजे हैं, कृष्ण का जन्म हो गया है, अभिषेक भी हो गया है, अब एक महामंत्र कीर्तन करेंगे कृष्णदास जी और इसके बाद में हम लोग वहां पर के प्रति अत्यंत ऐसी भावना हो गई, दीक्षा भी अब उसकी हो गई और उसको कृष्ण के साथ में संबंध ज्ञान हो गया, अनर्थ भी बहुत से दूर हो गए हैं। तो क्या है भागवत का, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत उत्तम श्लोक है, भक्ति भवति नैष्ठिकी। अब ये जब नैष्ठिकी भक्ति हुई, संबंध ज्ञान भी उदित थोड़ा थोड़ा सा हो गया, ये कृष्ण हमारे एटर्नल पूज्य आराध्य हैं, मैं उनका नित्य सेवक, ये भी भाव। इस संबंध ज्ञान से युक्त होकर के अनर्थों को छोड़ करके जब अब ये नाम संकीर्तन करता है, निष्ठा भी आ गई है, तब उस समय के लिए बदला रहे हैं जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ये उत्तम भक्ति के अंदर में धीरे धीरे ये आएगा, तब उसके द्वारा चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा, नहीं इसके पहले नहीं होगा। साधारण रूप से हरे कृष्ण कर रहे हैं, अनर्थ भी गजगज कर रहे हैं, निष्ठा भी उत्पन्न नहीं हुई है, उसे संबंध ज्ञान का उदय भी नहीं हुआ है, भोगों में रुचि भी है, ऐसे नहीं। इसलिए इस अवस्था के लिए कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसलिए यहां पर प्रतिबिंब आभास के अंतर्गत जो नाम कीर्तन होता है, इसका यहां तात्पर्य नहीं है। जैसे सूर्य है आकाश में उदित है, उसकी परछाई पड़ती है पानी में और वो भी खूब चकचक चमकता है, किंतु वह सूर्य नहीं है, प्रतिबिंब है। ऐसे ही शुद्ध रूप में भगवान का भी नाम नहीं कर रहा है, आभास भी नहीं है, छायावास, वो प्रतिबिंब नाम आभास है, अपराधमय है, उस नाम से नहीं, संबंध ज्ञान के से युक्त होकर के श्रद्धा के साथ गुरु वैष्णव की निरंतर सेवा करते हुए यदि हरि कथा श्रवण करेगा और तब फिर नाम जो कीर्तन करेगा उस नाम के लिए ये बतलाया गया, उसमें भी अनर्थ रहेंगे कुछ कुछ, कोई बात नहीं, तब धीरे 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 और अविद्या दूर होती जाएगी, अनर्थ नष्ट होते जाएंगे, धीरे धीरे अब रुचि आएगी, फिर निष्ठा आएगी, आसक्ति आएगी। इसलिए यहां पर ऐसे संकीर्तन के लिए चैतन्य महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं, प्रतिबिंब मनाभाव हास इत्यादि के लिए नहीं कर रहे हैं, शुद्ध वैष्णव के द्वारा। जिनके चरण कमलों की सर्वतोभावे न सेवा होती है वे सर्वेश्वरेश्वर चैतन्य महाप्रभु जी करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बतला रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, अब यहां से आरंभ कर, ऐसा यदि कोई नाम संकीर्तन है संबंध ज्ञान से युक्त होकर कुछ कुछ अनर्थ भी दूर हो गए हैं और शुद्ध भाव से यदि वो नाम करता है वैष्णव के अनुगत्य में करता है तो उसके द्वारा धीरे धीरे अनर्थ दूर होंगे, ऐसे अनर्थ दूर नहीं होगा। तब सबसे पहले ये उसकी जिह्वा पर नाम स्फूर्ति प्राप्त होते हैं, किस रूप से, अब यहां पर चैतन्य महाप्रभु जी कर भगवान नाम अतः कृष्णाम आदि न भवेत ग्राह्य मंत्री नहीं होता, भगवान का नाम चिन्मय है रस स्वरूप है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनतान नाम नामी, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, बल्कि कुछ अर्थों में नाम नामी की अपेक्षा उसकी महिमा अधिक है, साधारण जीवों के लिए उपलब्ध है, कृष्ण उपलब्ध नहीं है जब तक संपूर्ण अनर्थ दूर न हो जाए, प्रेम नहीं प्राप्त हो जाए, किंतु नाम किसी भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति वहीं से आरंभ कर सकता है। इसलिए यहां कहते हैं कि माया के द्वारा रचित इस संसार में जो मायाबद्ध जीव हैं, जिनकी जीवा भी जड़ है, कान भी जड़ है, मन भी जड़ है, उसका हृदय भी जड़ है, अभी और कृष्ण नाम अपराकृत हैं, वो अपराकृत नाम जड़ जीवा पर जड़ कानों में कैसे प्रकट हो सकते हैं, इसकी विधि क्या है, ये तो ऐसा असंभव है किंतु हो सकता है, कैसे हो सकता है इसी के लिए ये बतला रहे हैं। बोलिए, इन वेरी मॉर्निंग आट विल बी डन एट 4 एंड वी शुड रेडी within 4, just at time 5 we will go to bus station with our luggages and avail that bus with serial number what has been given, and you should go tomorrow in buses like yesterday and arrange everything, unko sari vyavastha wahan par karenge। Dusri baat, कल हम लोग अपने सामान के साथ ही साथ में हम लोग सबसे पहले भांडीर वन में भद्र वन में जाएंगे, वहां से दर्शन करके मानसरोवर में जाएंगे एंड मानसरोवर के बाद में हम लोग ब्रह्मांड घाट में स्नान करेंगे और स्नान करके यदि समय होगा तो वहां गोकुल में 84 खंभा नंद भवन और जहां पर उनका जन्म हुआ था गोकुल में वहां जाकर के पास ही में हम लोग प्रसाद पाएंगे महावन गोकुल में ही, और यदि विलंब होने की संभावना होगी तो हम लोग पहले वहां पर आकर के प्रसाद पा करके 2-3 बजे वहां से निकल करके गोकुल महावन में दर्शन करके और फिर हम लोग वहां से रावल होते हुए शाम तक मथुरा में जाने की चेष्टा करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमने कहा था जो पंडा जी हम लोगों के साथ में 5 दिन रहे, संकल्प भी कराया, पंडा जी इज विथ अस दो इट सीम्स दैट ही इज डूइंग नथिंग बट ही इज सेविंग अस फ्रॉम मंकीज लाइक सो मेनी पर्सन, इफ ही इज नॉट विथ अस ओह सो मेनी पंडा विल कम एंड दे विल डिस्टर्ब एंड दे विल नॉट हैव गिव चांस टू टेल हरि कथा, सो ही इज सेविंग एनी हाउ, सो आई टोल्ड दैट यू शुड पे समथिंग
टू डोनेट हिम एंड फॉर संकल्प। सो आप लोग से जितना हो सके बद्रीनाथ जी के पास में आप लोग जमा कर देंगे, जो जमा किए हैं तो ठीक है, नहीं तो नवीन के पास में उनके पास में जल्दी से आज जमा कर दीजिए कुछ, और नहीं तो फिर हमको तो देना ही, हम तो देंगे ही। इफ यू आर नॉट गिविंग आई विल हैव टू पे, आई मस्ट पे, इट इज नॉट। अच्छा, तो इफ दे हैव देन सो मच थैंक्स टू देम।
अच्छा,
तो फॉर